ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओम ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन आदि देव प्रजा पिता श्री बोलते ध्वनियों ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओम सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ विश्व में थी पाप की जब घटा छाई तब विभूति आप जैसी धरती पे आई एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों से शिव बाबा पधारे
ओम शांति। बड़ा प्रसिद्ध है कि भारत में साल में 365 डेज है, तो 366 त्योहार है, लेकिन किसी को यह नहीं मालूम कि सतगुरु वार भी एक इतना सुंदर त्योहार है जब आत्माओं का साकार लोक से और मूल वतन वासी का सूक्ष्म वतन में दोनों का मिलन होता है। ये वो फेस्टिवल है जिस फेस्टिवल में बहुत बड़ी फीस्ट होती है, वैरायटी चीजें बनती हैं और उस दाता को सर्व भावनाओं से स्वीकार कराई जाती। ऐसा फेस्टिवल जो इतना सुबह सुबह हो जाता है कि उसकी छुट्टी करने की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि पहले जब यज्ञ की शुरुआत थी तो भोग का टाइम 12 बजे ही होता था, 12 बजे भोग लगेगा, चाहे कोई ऑफिस से दुकानों से निकलकर आ सकते थे तो आते थे, क्योंकि नियम था कि जब तक भोग न लग जाए तब तक कोई भोजन पान नहीं कर सकता है, पहले बाबा को भोग लगेगा फिर कुछ पान किया जाएगा। लेकिन अब तो समय कुछ परिवर्तित हो चुका है, सुबह भी आप में से कहीं चाय पी के आए होंगे, कोई बादाम खा के आए होंगे, कुछ ना कुछ अपनी पेट पूजा करके भगवान को भोग लगाने हम सब यहाँ बैठे हैं। तो आज हम बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाने के लिए यहाँ बैठे हैं। उस फेस्टिवल से पूर्व प्यारे बाप दादा के जो महावाक्य हैं, आज के दिन में बाबा ने हम बच्चों को क्या सावधानियां दी हैं, क्या समझाने दी है, कौन सी नई बात बताई है, हम सब पहले सुनेंगे फिर हम त्योहार मनाएंगे। तो आज के महावाक्यों में सार में है, मीठे बच्चे वृक्षपति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है। ये बड़ी श्रेष्ठ दशा होती है, ये दशा बच्चों पर बिठाई है। अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। प्रश्न है, अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती है, उनकी निशानी क्या होगी? ये प्रश्न है बाबा का, जो आप सबको सोचने के लिए दिया जा रहा है, फिर उत्तर सुनेंगे। अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती है, उनकी निशानी क्या होगी? जो बच्चे जीते जी दे के सब संबंधों को त्याग, अपने को आत्मनिश्चय करते हैं, ऐसे निश्चय आत्मिक बुद्धि वाले, ऐसे बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है। उनके ही सुख का गायन है कि अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, उनकी खुशी कभी भी गुम नहीं हो सकती। रिकॉर्ड है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने बाप की महिमा सुनी। आज के दिन को कहा ही जाता है वृक्षपति डे, जिसको मिलाकर कहा जाता है बृहस्पति। इनको ही गुरुवार भी कहा जाता है। ना सिर्फ गुरुवार परंतु सत गुरुवार। बंगाल में बहुत मानते हैं, गाया जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, इसलिए वृक्षपति कहते हैं। बीज ठहरा तो पति भी ठहरा। वृक्ष के बीज को बाप भी कहेंगे, उनसे वृक्ष उत्पन्न होता है। यह है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़। इनका बीज ऊपर में है, तुम जानते हो। हम बच्चों पर अब अविनाशी वृक्षपति की दशा है, क्योंकि अविनाशी स्वराज्य मिल रहा है। साक्षों को कहा ही जाता है अविनाशी सुख धाम। कलयुग को कहा जाता है विनाशी दुख धाम। अब एक दुख धाम का विनाश होना है, सुख धाम अविनाशी है। आधा कल्प चलता है। जो अविनाशी वृक्षपति स्थापित कर रहे हैं बच्चों को सर्विस के लिए पॉइंट्स नोट करने हैं। प्रदर्शनी में यही पॉइंट मुख्य समझाने की है, क्योंकि मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं। बराबर ये है ज्ञान। अब बाप ये ज्ञान देते ही हैं नई और पुरानी दुनिया के बीच में, फिर ये प्राय लोप हो जाता है। देवताओं को ये ज्ञान नहीं होता है। अगर ये चक्र का ज्ञान हो फिर राजाई में मजा ही ना आए। अभी भी तुमको ख्याल होता है ना, क्या राज्य लेकर फिर हमारी ये हालत होगी। परंतु ये तो ड्रामा बना हुआ है। चक्र को फिरना ही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। कैसे रिपीट हो रही है ये तुम बच्चे जानते हो। ये है मनुष्य सृष्टि। तुम्हारी बुद्धि में मूल वतन का झाड़ भी है। सेक्शन सबका अलग अलग है। कैसे मूल वतन में सब आत्माओं के अपने अपने सेक्शन बने हुए हैं, ये बातें कोई की बुद्धि में कभी नहीं होंगी। कोई शास्त्रों में तो ये लिखी हुई नहीं है। हम आत्मा असल शांति धाम की रहवासी हैं, अविनाशी हैं, कभी विनाश को नहीं पाते हैं। वे समझते हैं बुदबुदा पानी से निकल फिर उसमें मिल जाता है। जैसे पानी से बुदबुदा निकलता है उसमें मिल जाता है, ऐसे ही आत्मा परमात्मा से निकली और उसमें समा जाती है। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा राज है। आत्मा अविनाशी है, जिसने सारा पाठ नूंदा हुआ है। ये चक्र का नॉलेज कोई शास्त्रों में नहीं है, भले कहां कहां स्वास्थ्य का भी दिखाते, चक्र की सिर्फ ऐसे ऐसे लकीर लगा देते हैं, जिससे सिद्ध होता है अनेक धर्म थे। बाबा ने समझाया है मुख्य धर्म और शास्त्र हैं चार। साचु त्रेता में कोई धर्म स्थापन होता नहीं है, ना वहां कोई धर्म शास्त्र ही होता है। ये सब द्वापर से शुरू होते। फिर देखो कितनी वृद्धि होती है। अच्छा, गीता कब सुनाई गई? प्रश्न है। बाप कहते हैं, मैं कल्प के संगम युगे ही आता हूं। उन्होंने फिर कल्प वृक्ष या कल्प अक्षर निकाल सिर्फ युगे युगे लिख दिया। वास्तव में संगम युगे और कोई धर्म स्थापित नहीं करते हैं। ऐसे नहीं कि त्रेता के अंत और द्वापर के आदि के संगम पर इस्लामी धर्म स्थापित हुआ, नहीं, कहेंगे द्वापर में स्थापित हुआ। ये संगम का सुहावना समय है जिसको कुंभ कहते हैं। कुंभ संगम को कहा जाता है। ये है आत्माएं और परमात्मा के मिलन का संगम। ये रूहानी मेला संगम पर ही होता है। उन्होंने पानी की गंगा का नाम बाला कर दिया है। ज्ञान सागर पतित पावन को जानते ही नहीं है। उसने कैसे पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाया, कोई शास्त्रों में है नहीं। अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं, क्या कहते होंगे? नित्य कई बार कहते हैं और आज पुनः कह रहे हैं। तुम बच्चों को बाप कहते हैं, मामे कम याद करो, देखे सब धर्म त्यागो। किसको कहते हैं? आत्माओं को कहते हैं। इसको कहा जाता है जीते जी मरना। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो देह के सब संबंध छूट जाते हैं। बाप कहते हैं, जो भी देह के संबंध हैं, वह सब छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो। निश्चय आत्मिक बुद्धि बनो। जितना जास्ती याद करोगे तो बृहस्पति की दशा होगी। जांच करो, हम शिव बाबा को कितना याद करते हैं। याद से ही कट निकलेगी और तुमको खुशी होगी। तुम महसूस कर सकते हो हम आत्मा कितना बाबा को याद करते हैं। अगर कम याद करेंगे तो कट भी कम निकलेगी और खुशी भी कम रहेगी। और तीसरी बात, पद भी कम पाओगे। आत्मा ही सतो रजो तमो बनती है, इस समय का गायन है गोप गोपियों के अति इंद्रिय सुख का। और कुछ भी याद नहीं पड़ता सिवाय बाप के, तब ही खुशी का पारा चढ़ेगा। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा अथवा सतगुरु की दशा है, फिर कभी खुशी गुम हो जाती है तो कहते हैं बृहस्पति की दशा बदल राहु की बैठी। कोई बहुत शाहूकार होते हैं, कोई सट्टा लगाया ये दिवाला निकला। भारत में ही जब ग्रहण लगता है तो कहते हैं देर राम तो छोटे ग्रहण, तुम्हारा देवी देवता धर्म भी सोना कला संपूर्ण था, उनको ग्रहण लगा हुआ है। राहु की दशा बैठती है इसलिए देवताओं के आगे जाकर गाते हैं आप सर्व गुण संपन्न, हम पापी और कपटी हैं। अभी तुम समझते हो राहु का ग्रहण लगने से सब काले बन गए हैं, चंद्रमा की पिछाड़ी में लकीर जाकर रहती है। बाप भी समझाते हैं तुम देवी देवताओं के चित्र हैं। गीता ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है, परंतु ये अपने धर्म को नहीं जानते। रिलीजियस हेड्स की कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वहां भी समझा सकते हो, ईश्वर सर्वव्यापी तो है नहीं, वह तो बेहद का बाप है, बच्चों को आकर वर्षा देते हैं, साधु संत आदि को वर्षा मिलता नहीं है तो मानेंगे कैसे? वो मानेंगे ही नहीं इस बात को कि परमात्मा आकर वर्षा देता है। वो समझते हम तो बहुत पहुंचे हुए हैं, अगर देता तो पहले हमको ही देता। बाबा कहते साधु संतों को मैं वर्षा नहीं देता क्योंकि मुझे जानते ही नहीं है। तुम बच्चों को ही वर्षा मिलता है। मुख्य बात है कि ये सिद्ध करने की है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। शिव जयंती होती है, शिव जयंती कहो अथवा रुद्र जयंती कहो, रुद्र ये ज्ञान यज्ञ रचते हैं, है तो शिव, वही गीता ज्ञान यज्ञ है जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। प्रैक्टिकल में तुम देखते हो कैसे निराकार बाबा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। साकार तो कुछ कर नहीं सकेगा, ये बेहद का यज्ञ है, इनमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है, बाकी तो वह सब है जिस्मानी यज्ञ। कितना रात दिन का फर्क है। बाप कहते हैं ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, विनाश भी होना है। तुम जब पास हो जाओगे, पूरा योगी और ज्ञानी बन जाओगे, तो फिर तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग चाहिए, नर का जरूर विनाश चाहिए। राजस्व में अक्षर भी ठीक है, घोड़े को स्वाहा करते हैं यज्ञ में, घोड़े को स्वाहा करते हैं। वास्तव में है तुम्हारा ये रथ जिसको तुम स्वाहा करते अर्थात भूलते हो। एक दक्ष प्रजापति का यज्ञ रचते हैं, उनकी भी कहानी है। अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, किस बात की, कि हमको वृक्षपति बाप पढ़ा रहे हैं। हमारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा है, हमारी अवस्था बहुत अच्छी है। फिर चलते चलते लिखते हैं, बाबा हम तो मूंझ गए हैं, पहले हम बहुत खुशी में थे, अब पता नहीं क्या हुआ है। यहां आकर बाप का बनना बड़ी यात्रा है। वहां तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, कितना पैसा खर्च करते। अब यहां तो दान करने की बात ही नहीं, इनमें कुछ भी पैसा खर्च नहीं करना है। वह जिस्मानी यात्रा है और तुम्हारी है रूहानी यात्रा। जिस्मानी यात्रा से फायदा कुछ भी नहीं है। गीत में भी है ना, चारों ओर लगाए फेरे फिर भी जन्म जन्मांतर दूर रहे, आपसे मिल नहीं पाए। अरे तुम समझते हो कितनी ढेर यात्राएं की होंगी, कहां ना कहां मूझ जाते जरूर हैं। आज भी ब्राह्मण अगर दिल्ली में आ जाए, हरिद्वार ऋषिकेश ना जाए, लगता उनकी दिल्ली यात्राएं पूरी नहीं हुई। अधिकतर गुजरात के कहां जाना है, ऋषिकेश, हरिद्वार, अरे क्या रखा है वहां, वृंदावन, मथुरा, गोकर्ण, ये हम यात्राएं करेंगे। शायद भक्ति की यात्राएं कुछ रह गई होंगी, तो मिट्टी सब देखने के लिए जाना चाहते हैं कि देखा है कितनी मिट्टी मिट्टी हो चुकी है वहां, बाकी तो कुछ रखा नहीं है। कहां ना कहां मुंह जाते जरूर है। हरिद्वार में गंगा जी पर जरूर जाते हैं, पतित पावनी गंगा समझते हैं ना। अब वास्तव में तुम हो सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं, तुम्हारे पास भी बहुत आकर ज्ञान स्नान करते हैं। बाबा ने समझाया है, सतगुरु एक ही है और सर्व का सदगति दाता सिवाय एक सतगुरु के और कोई गुरु है नहीं। बाबा कहते हैं, मैं तुमको कल्प कल्प संगम युग पर आकर सदगति दे पुजारी से पूज्य बनाता, फिर तुम पुजारी बन दुखी बन जाते हो। यह भी अभी पता पड़ा है, बरोबर हमारा आधा कल्प राज्य चलता है, फिर द्वापर में हम सो देवी देवता वाम मार्ग में चले जाएंगे। जब रावण राज्य शुरू होता है तब से वाम मार्ग शुरू होता है, उनकी भी निशानियां हैं। जगन्नाथ के मंदिर में जाओ, अंदर काली मूर्ति है, बाहर में देवताओं के गंदे चित्र हैं। उस समय अपने को भी थोड़ी समझ में आता था कि ये क्या है, अभी तो स्वयं को समझ में आया कि कैसे देवता वाम मार्ग में गए और कैसे एक समय था जबकि वो देवता थे। ये सब बातें अभी समझ में आती हैं। उस समय अपने को थोड़ी समझ में आता था कि क्या है विकारी मनुष्य, विकारी दृष्टि से देखेंगे तो समझते थे। देवताएं भी विकारी थे, ये लिखा हुआ है। देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, ड्रेस भी देवताओं की दी है, ये स्पष्ट करने के लिए कि देवता ही अपने दैवी जीवन के पश्चात वाम मार्ग में गए, लेकिन ड्रेस देवताओं की होने के कारण भक्तों ने समझा देवताएं भी विकारी थे। यहां भी दिलवाड़ा मंदिर में जाओ तो ऊपर में स्वर्ग लगा हुआ है, नीचे तपस्या में बैठे, छत पर स्वर्ग दिखा रहे हैं। इन सब राजों को और कोई जानते नहीं है, बाबा का तो अनुभवी रथ है ना, ये रथ सब कुछ जानता है। तुम बच्चे अब समझ रहे हो, आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम जो पहले अलग हुए हो फिर तुम्हें आकर पहले पहले मिलते हो। सच्चों का फर्स्ट प्रिंस है श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का बाप भी तो होगा ना। श्री कृष्ण के मां बाप का इतना कुछ दिखाते नहीं है, सिर्फ दिखाते हैं माथे पर रखकर टोका नदी से उस पार ले गया। राजाई आदि कुछ नहीं दिखाई है, उनके बाप की महिमा क्यों नहीं है। अभी तुम जानते हो इस समय श्री कृष्ण की आत्मा ने अच्छी रीति पढ़ाई पड़ी है, जिस कारण मां बाप से भी ऊंचा पद पाया है। तुम समझते हो हम श्री कृष्ण की राजधानी में थे, स्वर्ग में थे ना, फिर हम चंद्रवंशी बने। अब फिर सूर्यवंशी बनने के लिए श्रीमत पर चल, पावन बन, पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। हर एक अपनी अवस्था को देख सकता है। अगर हम इस समय श्री छोड़ दें तो किस गति को पाएंगे, हर एक समझ सकता है। जितना बाप को याद करोगे उतने भी कर्म विनाश होंगे। मनुष्य के ऊपर कोई आफते व दुख आता है वह दिवाला निकालते हैं तो साधुओं का जाकर संग करते हैं। फिर मनुष्य समझते ये तो भक्त आदमी है, ठगी थोड़ी करेंगे। ऐसे ऐसे भी दो चार वर्ष में बहुत धनवान हो जाते हैं, उनके बहुत छिपे हुए पैसे होते हैं। हर एक अपनी बुद्धि से समझ सकता है तुम्हारे में भी बहुत है। सुनो, तुम्हारे में भी बहुत है जो कम याद करते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं अपना कल्याण चाहते हो तो अपने पास नोटबुक रखो, चार्ट नोट करो। हम सारे दिन में कितने पूरा समय याद में रहे। मनुष्य तो सारे जीवन की भी हिस्ट्री लिखते हैं, तुमको तो सिर्फ याद का चार्ट लिखना है। अपनी ही उन्नति है। बाबा को याद नहीं करेंगे तो ऊंचा पद पा नहीं सकेंगे। विकर्म विनाशी नहीं होंगे तो ऊंचा पद कैसे पाएंगे? फिर सजाएं खानी पड़ेंगे। मोचरा जो नहीं खाएंगे तो पद अच्छा मिलेगा, जो सजाएं नहीं खाएंगे उन्हें पद अच्छा मिलेगा। मोचरा खाकर फिर कुछ थोड़ा बहुत पद पाया, ये क्या काम का? धर्मराज का मोचरा ना खाएं, बेइज्जती ना हो, ये पुरुषार्थ करना है। बेइज्जती करा के कुछ खा भी लिया तो क्या खाया? तुम देखते हो शिव बाबा बैठा रहता है, फिर धर्मराज भी है, तुमको सब साक्षात्कार कराते, तुमने ये किया था याद है, अब खाओ सजा। फिर उसी समय सजाए उतने ही खाते हैं जितने जन्म जन्मांतर खाते हैं। वो पीड़ा ऐसी होती है जैसे जन्म जन्मांतर सजा खाई। पिछाड़ी में थोड़ा रोटी टुकड़ा मिला, उसे क्या फायदा? मोचरा तो नहीं खाना चाहिए। अपनी अवस्था की जांच करनी है। जैसे पोता मिल निकालते हैं, कोई 6 मास का, कोई 12 मास का, कोई तो रोज का भी निकालते हैं। बाप कहते हैं तुम भी व्यापारी हो, कोई विरला व्यापारी बेहद के बाप से व्यापार करे। धन नहीं तो तन मन तो है ना। उनको शराब भी कहते हैं, मट्टा सट्टा करते हैं ना। तुम तन मन धन देते हो, रिटर्न में 21 जन्मों के लिए कितना वर्षा पाते हो? बाबा हम आपका, ऐसी युक्ति बताओ जो हम आत्मा और शरीर इन लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाए। बाबा कहते हैं मैं तुमको कितना घोड़ा बनाता हूं, एकदम रूप ही बदल देता हूं। दूसरे जन्म में तुमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा, तुम वैकुंठ में देखते हो, तुम जानते हो ये मम्मा बाबा फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट भी दिखाते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ करे, अगर पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे और दम चक्र मचाएंगे तो अपना पद ही भ्रष्ट करेंगे, किसी का क्या गवाएंगे? अपना ही पद भ्रष्ट करें। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। कई मंत्र आप और पढ़ते हो पढ़ते रहो, मुझे नहीं मालूम हो, क्योंकि कई जगहों पर कई कुछ बोलते हैं, बाबा गुड मॉर्निंग, बाबा धन्यवाद, बाबा शुक्रिया, ना जाने क्या क्या बोलते हैं। जो बोलना है बोल लीजिए, पीछे अपने आप में धारणा के लिए मुख्य सार। अपनी अवस्था की जांच स्वयं ही करनी है। अपने कल्याण के लिए डेली डायरी रखनी है, जिसमें याद का चार्ट नोट करना है। दूसरा, बेहद के भाव से सच्चा सच्चा व्यापार करना है, अपना तन मन धन बाप हवाले कर 21 जन्मों के लिए रिटर्न देना है। जो कुछ करेंगे 21 जन्म उसका फल मिलेगा, 21 जन्म रिटर्न लेना है। निश्चय बुद्धि बन अपना कल्याण करना है, निश्चय बुद्धि बन अपना कल्याण करना है। वरदान है खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्न जीत भव। खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्न जीत भव। अब इसका स्पष्टीकरण सुनो, जो बच्चे जमा करना चाहते हैं वे शक्तिशाली बनते हैं। यदि अभी अभी कमाया, अभी अभी बांटा और स्वयं में समाया नहीं तो शक्ति नहीं रहती है। सिर्फ बांटने व दान करने की खुशी रहती है, खुशी के साथ शक्ति हो तो सहज ही विघ्नों को पार कर विघ्न जीत बन जाओगे। फिर कोई भी विघ्न लगन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसलिए जैसे चेहरे से खुशी की झलक दिखाई देती है, ऐसे शक्ति की झलक भी दिखाई दे। अभी अभी कमाया और अभी अभी बांटा परंतु स्वयं में समाया नहीं तो उसका परिणाम बाबा ने सुना दिया। स्लोगन है, परिस्थितियों में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो, अव्यक्त इशारे, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे, शक्तिशाली याद का अनुभव कर। लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ ज्वाला रूप का ही रहा हुआ है। पांडवों के कारण यादव रुके हुए हैं, विनाशकारी रुके हुए हैं। पांडवों की श्रेष्ठ शान रूहानी शान की स्थिति यादों के परेशानी वाली परिस्थिति को समाप्त करेगी। तो अपनी शान से परेशान आत्माओं को शांति और चैन का वरदान दो। ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति को समझते हुए इसी पुरुषार्थ में रहो। लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति को समझते हुए इसी पुरुषार्थ में रहो। ये थे प्यारे बाबा के महावाक्य। अब भोग हमारे सामने आ गया है। महावाक्य सुनाने वाला हमको निमंत्रण दे रहा है, आओ बच्चे सूक्ष्म वतन में मेरे पास आओ। आज जो सुना उसका बल भरो और प्यार से बाबा को भोग स्वीकार कराए, बाबा का भोग स्वीकार करो। ये बहुत सुहावना दिन है जब स्वयं दाता का हम बच्चों को निमंत्रण मिलता है, और वो भी साकार जगत के किसी देश के अंदर नहीं, लेकिन इस साकार जगत से पार सूक्ष्म वतन का निमंत्रण। अब वो सूक्ष्म वतन में जाने की विधि बाबा ने कई बार बताई, और आज मूल महावाक्यों में यही सुनाया, अतीन्द्रिय सुख किसको मिलेगा, बृहस्पति की दशा किस पर बैठेगी। जो देह संबंध और देह दुनिया से मन को निकाल लेगा, इस समय केवल मात्र मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म चोले में निवास कर प्यारे बाबा को, जो सूक्ष्म चोले ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश होकर हम बच्चों के भोग स्वीकार करें, जिस प्यार से, जिस स्नेह से, जिस भावना से जिसने भी भोग लगाया या जो भोग लगाने बैठे हैं, बाबा आज सबको बहुत शक्तियों के वरदानों से भरपूर करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। आओ मेरे बच्चे, आओ मेरे वतन में, मैं तुम्हें अपनी शक्तियों से भरपूर कर दूं। इतने शक्तिशाली बन जाओ कि अपने प्रश्नों के उत्तर आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाए, बाबा को पूछने की आवश्यकता ना पड़े, लेकिन बाबा आपको सब चीजें स्पर्श करते। चलते हैं।
हमारी दीदी चक्रधारी का बहुत बहुत धन्यवाद। खास शांति वन से आज सुबह यहाँ आए हम बच्चों को मुरली सुनाने बाबा की, और अभी हम सब मिल करके बाबा की याद में बाबा को भोग लगाएंगे। शशि दीदी तो नहीं आ सके हैं, तो हम सब मिलकर, चक्रधारी दीदी भी यही है, सब मिलकर बाबा को भोग लगाएंगे। वतन में जाएंगे, सभी जाएंगे ना, हाँ सभी जाएंगे वतन में, जो जाएंगे हाथ उठाएं जी। दीदी इस समय भट्टी चल रही है यहाँ, इसमें लुधियाना, ये बहादुरगढ़, इंदौर और कहाँ से, हाँ ये और भी कई स्थानों से आए हैं जी, अहमदाबाद, तो इन स्थानों से भट्टी करने आए हैं। टीचर्स भी बहुत आई है नीचे से, जो भट्टी करने आए हैं वे हाथ उठाएं। आज इनका तीसरा दिन है, परसों भट्टी शुरू हुई थी और टीचर्स भी नीचे से भट्टी करके यहाँ आई है। टीचर्स हाथ उठाएं जो नीचे से आई है, कल आई है, कुछ आज आई है, तो आप सबको पता है कि आपके नाश्ता, दिन का भोजन, रात का भोजन ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में होगा। तो अभी हम सब मिलकर बाबा को भोग लगाएंगे और भोग के बाद, अब संदेशी तो है नहीं तो इसीलिए संदेश तो नहीं होगा, लेकिन आप सबको अमृत जरूर मिलेगा। पांच लाइन में अमृत होगा, पांच लाइन करें, पांच लाइन में अमृत होगा, तीन लाइन यहाँ होगी, एक लाइन और अन्य भाइयों की, और एक लाइन भट्टी के आए हुए भाइयों की, और यहाँ एक लाइन बहनों की, जिसमें भट्टी की बहनें होगी और भी जो टीचर्स बहनें आई है नीचे से वो होगी, और यहाँ जो अन्य सेवाधारी या पार्टी में आए हैं, पर धीरे धीरे आएंगे अमृत लेने, क्योंकि यहाँ जगह कम है, तो धीरे धीरे आएंगे और फिर ऊपर आपका नाश्ता होगा और भट्टी का प्रोग्राम तो जैसे है वैसे ही रहेगा। अभी हम सब बाबा की याद में बैठते हैं, और जो आबू निवासी भाई बहने हैं आप सबको, आबू निवासी हाथ उठाए, बैठे ही कोई, आबू निवासी भाई बहने, योग भोग के बाद, अमृत के बाद आप सभी फूड डिपार्टमेंट में जाएंगे, आपको विशेष वहां पर फूड दिया जाएगा, तो वहीं जाएंगे। अभी हम सब बाबा की याद में बैठते हैं, सब साथ में मिलकर बाबा को भोग लगाते हैं। ओम शांति।
पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योति
के।
पीते हैं, तेरी आत्मा अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। प्रभु संग संग बाबा, यूं ही आ प्रभु संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद